أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آیت نمبر 186 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں یاد رکھو، تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی. ایسے لگتا ہے کہ ایک بریکنگ نیوز ہے، تم اس طرح سے ضرور آزمائے جاؤ گے. یہ وہی بات ہے جس کا تذکرہ سورۃ البقرہ کے 19 رکوع کی آیت نمبر 155 میں ہوا. ہم پیچھے پڑھ چکے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی قدر خوف سے اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. یہاں دیکھیے لَتُبْلَوُنَّ، تُب مجہول ہے، پیسیو وائز ہے، یعنی جس میں شدت بڑھ جاتی ہے کسی کام کی، اور وہ کیا ہے کہ تمہاری آزمائش ہو کر رہے گی. اور تاکیدے دیکھیے گا، لام ہے جو پہلا لفظ، یہ تاکید کا ہے، پھر اس کے بعد جو نون ہے اور اس کے اوپر شد ہے، یہ بھی تاکید کی ہے، یعنی جس کو اردو میں آپ اس طرح ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے. کان کھول کر سن لو کہ یہ ایمان کا راستہ ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. ایمان کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتا، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے اور بغیر تکلیفیں اٹھائے تمہیں جنت مل جائے. سورۃ بقرہ کی آیت 214 میں بھی ہم پڑھ چکے، کیا حسب تمن تدخل الجنت، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ یوں ہی جنت میں داخل کیے جاؤ گے، حالانکہ تم پہ تو وہ حالات اور واقعات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پہ آئے تھے. کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، تو اس کی خبر دی گئی. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، نمبر ایک لکھ لیجیے اس پہ، اور تمہیں لازماً سننی پڑے گی. یہ نہیں ہوا کبھی کہ جو اللہ کا بنے اس کو بندوں کی نہ سننی پڑے. یہ تو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے بات لکھ کے بتا دی کہ جو میرے راستے میں آئے گا اس کو باتیں سننی پڑیں گی. کس کس سے سننی پڑتی ہیں، اس کا ادھر تذکرہ ہے. نمبر ایک، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں جو تم سے پہلے کتاب کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. ٹیکس کو دیکھ لیں تو یہاں مراد یہود مدینہ ہے، اور اگر اپنے اور میرے اوپر لے لیجئے تو جو ہی ایک بندہ اللہ کے راستے میں آتا ہے اس کو باتیں ملتی ہیں. ایمان اور آزمائش ساتھ ساتھ ہے، اور سب سے زیادہ ایمان بڑھتا ہے قرآن کے سیکھنے اور سکھانے سے اور اس کی خدمت کرنے سے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑنے والوں کو لوگ چھوڑ دیں؟ سورۃ آل عمران کے شروع میں یہود کی کچھ عادات کا تذکرہ تھا کہ کیسے انہوں نے اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے تھے، اور اب سورت کا اختتام ہے بالکل انہی باتوں پہ. مسلمانوں کو بتا دیا کہ جب اللہ کا بنو گے تو بندے تم سے ناراض ہوں گے. آپ کی زندگی ہو، میری ہو، یا نبی کی زندگی تھی کل کی، ذاتی زندگی پہ کوئی بات نہ بھی کرے، ہم آج تک دیکھیں تو ہم ہو سکتا ہے بلوڈ آف دی پیپل ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ ایپل آف دی آئی ہوں، آپ اپنی فرینڈ شپ سرکل میں بہت معروف ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں صادق اور امین کا ٹائٹل تو ابھی بھی نہیں ملا ہوگا. لیکن جو ہی سچا دین زندگی میں آتا ہے تو اللہ آزماتا ہے، اور کیسے آزماتا ہے، بندوں کے ذریعے آزماتا ہے. یہ لکھ لیجئے، اللہ کے راستے کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا، اس میں سب سے پہلی آزمائش اللہ ڈائریکٹ خود نہیں ڈالتا کہ نعوذ باللہ کوئی تکلیف کر دے، کوئی بیماری ڈال دے. پرسنلی ڈفرینٹ لوگوں کے ایکسپیرئنسز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے بندوں سے آزماتا ہے. اسی لیے تو آیت الکرسی کے فوراً بعد کیا آتا ہے، فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ہم جب اللہ کے بنتے ہیں نا تو ہم بہت سارے بندوں سے کٹتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی ہماری ایک غلطی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے بہت سارے حق بندوں کو دیے ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا حق ڈرنے اور خوف کا حق ہے. ہم اللہ سے زیادہ بندوں سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ کی باتوں سے زیادہ بندوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ کے روٹھنے سے زیادہ بندوں کے روٹھنے سے ڈرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ امیدیں بھی لگائی ہوتی ہیں. اسی لیے ایک انسان جب اللہ کے راستے میں آتا ہے تو وہ مختلف قسم کے خوف سے نکل کر صرف اللہ کے خوف میں آ جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ خوف کے بہت سارے مختلف رنگ ہوتے ہیں نا، मसलन खौफ की एक किस्म है कि इंसान जिन्नों से डरता है, बदरूहों से डर गया, शैतानों से डर गया, पीर साहब ना नाराज हो जाए, फुला बुत ना नाराज हो, उसकी बददुआ लग गई, उसकी आह लग गई, ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, शिर्क हो जाता है इस तरह के दर्जे पे। एक दूसरा खौफ होता है तबई खौफ, बशरी तकाजे से, नुकसानदेह चीज़ जब सामने आती है तो इंसान उससे डरने लगता है। मसलन सांप को देखेंगे तो हमें से कोई भी नहीं बैठा रहेगा, छिपली को देखेंगे आग के करीब होंगे, ये क्या है, काबिले मलामत नहीं है, इट्स ओके लेकिन अपने अंदर स्ट्रेंथ हो और अल्लाह के ऊपर ईमान हो तो इंसान इस खौफ पे काबू पा लेता है। एक तीसरा खौफ होता है बुजदिलों का खौफ, कावर्डनेस, खौफुल जुबन्ना, यानी जो लोग खामखाई लोगों से डरते हैं, यहाँ इस खौफ की बात है कि तुम लोगों की बातों से डरोगे तो डर डर के मरोगे। याद रखिए जो लोगों से डरते हैं वो रोज जीते हैं और रोज मरते हैं, उनकी जिंदगी मिजरेबल होती है, उनकी जिंदगी से चैन और गम खत्म। शादियों में भी दिल धड़क रहा होता है कि सास ना नाराज हो जाए और नंद ना देख ले और मियाँ को ना पता चल जाए। जितना अल्लाह का डर ज्यादा होगा, लोगों का डर आपकी जिंदगी से निकलता जाएगा। लिहाजा जब आप लोगों से बेखौफ होते हैं तो लोग समझते हैं कि आप बदतमीज हो गए हैं, आप गुस्ताख हो गए हैं, आपकी जुबान खुल गई है, पहले तो बोलती नहीं थी, लंबी जुबान हो गई इसकी, बड़ी दलीलें देती है आगे से। इसकी मिसाल हजरत उमर की बहन फातिमा, वो बहन जो कभी बोली भी नहीं थी, जब उसने भाई को देखा और जुरत से जम गई और भाई ने कहा दिखा क्या पढ़ रही थी, कहा तुम्हें नहीं देना, तुम काफिर और काफिर मुशरिक होता है, कहेंगे तुम कैसे इतनी जुरत वाली हो गई, कहने लगी मुझे मेरे इस्लाम ने जुरत दे दी। आज भी हमारे यहाँ एक मारूफ बात है कि पढ़ी लिखी औरत ज्यादा बोल्ड है अनपढ़ देहाती औरत की निस्बत। फर्क किस बात का है कि पढ़ी लिखी औरत को पता है कि मेरे क्या राइट्स हैं, कोई मेरे ऊपर ज्यादती करेगा मैं गवर्नमेंट से हेल्प ले लूंगी, कुछ भी कर लूंगी। तो जब दुनिया के चार लफ्ज़ पढ़ने के बाद एक औरत की जुरत बढ़ जाती है तो अल्लाह का कलाम पढ़ने के बाद एक औरत कैसे शर्मगुमाल हो सकती है। बाज़ दफ़ा हम वो बातों की इजाज़त मांग रहे होते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं। कभी हम में से किसी ने दिन में चार दफ़ा ये नहीं कहा कि मियाँ साहब से कि मैं बाथरूम में चली जाऊँ, कभी नहीं कहा। और अगर एक औरत नमाज से पहले पूछ ले मैं नमाज पढ़ लूँ, रोजे से पढ़ लूँ, तो ये तो खुद खुदाई के दावे पे अगले को खड़ा करने वाली बात होती है। तो लिहाजा असूल समझ लें कि जब हम बंदों की खुदाई से निकल कर रब की खुदाई में फोकस्ड होते हैं तो लोग हमें डराते हैं। लतुबलवन्ना, जरूर बिल जरूर तुम अजमाए जाओगे, फी अमवालिकुम, तुम्हारे माल कैसे आजमाइश बनेंगे। सबसे पहले इसकी सूरत एक देखिए कि जब एक बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ आता है ना तो पहली कुर्बानी बाद दफा माली की देनी पड़ती है। कैसे, जब अल्लाह के रास्ते में निकले तवज्जो बट गई। पहले इंसान का फोकस दुनिया थी, 24 घंटे में शायद 20 घंटे कमाने या उसको इस्तेमाल करने में लगते थे, अब बीच में अल्लाह आ गया तो माल तो कम होगी, आप कह लें कि वर्किंग आवर्स तो कम होंगे, फुल टाइम से पार्ट टाइम हुए और बाद में पार्ट टाइम से हटते हुए बिल्कुल ही पीछे चले गए। फिर इसी तरह आप देखिए कि हराम और हलाल के लिए इंसान कॉन्शियस हो जाता है, पता नहीं मेरी कमाई में क्या ठीक है क्या नहीं है, जो ही ये लाइन खींची रातों की नींद उड़ गई, पेट में जो लुकमा जा रहा है कमाई यानी सोर्स ऑफ इनकम पे नजर जाती है। फिर माल कैसे आजमाइश बनते हैं, जो खा रहे हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, आप बताएं एक मोमिन चैन से बैठ सकता है, उसको कोई फिक्र दूसरा लग सकता है सिवाय इस फिक्र के कि जो मैं करने लगा हूं इससे मेरा रब राजी होगा कि नाराज होगा। और माल की कुर्बानी सबसे छोटी कुर्बानी है लेकिन शैतान इसको सबसे बड़ी कुर्बानी बना देता है। इंसान को कहता है तू तो दुखी है, अब ऐसा है वो है, ऐसा बंदा फिर जब माल के बारे में कॉन्शियस रहे तो उसको वो हदीस याद रखनी चाहिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला तजूल कदम इब्ने आदम इंद रब्बिही हत्ता युसअलु अन खमसा, कयामत के दिन आदम का बेटा मैदान महशर से कदम नहीं उठा सकेगा जब तक के 5 सवालों के जवाब ना दे। और उन 5 को मैं स्किप करके सिर्फ आखिरी 2 बता दूं, बीच के 2 अन मालिन, यानी 5 में से 2 सवाल माल के बारे में, मिन ऐन अक्तसबहु व मिन ऐन अनफक्हु, कहाँ से कमाया कहाँ खर्च किया, तो माल तो आजमाइश बनेगा। दुआ क्या है कि अल्लाह हमें माल की आजमाइशों से बचा ले। फिर इसी तरह माल फितना बन जाता है इंसान के लिए, माल का एक्सपोजर, माल का खूब गेटअप शो अप जो है वो एक दीनदार कल्चर के साथ रहता नहीं है। ये नहीं होता कि दीनदार के पास पैसे नहीं होते, माल नहीं होता, लेकिन उसकी पंप एंड शो नहीं होती, लिहाजा आजमाइश बन गई। दूसरी आजमाइश, वन फुसकुम, तुम्हारी जानों की आजमाइश। ये अनफुस की आजमाइश कैसे आती है? सबसे पहले तो अनफुस से मुराद हैं हम खुद, मैं, आई एम, अना। सबसे पहली आजमाइश है कि तुम मेरे रास्ते में अपनी जान से आजमाए जाओगे, निकलना पड़ेगा, वक्त बेवक्त खाना खाना पड़ेगा, नींद छोड़नी पड़ेगी, गरम बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशात को दबाना पड़ेगा। याद रखिए कि अल्लाह का दीन बंदे को खुद अपनी पूजा करने नहीं देता। ये जो पेट पूजा करते करते खुद की पूजा सिखाई ना बचपन से बच्चों को और खुद को भी, इससे निकलना पड़ता है। शुरू में इंसान इस नफ्स से आजमाया जाता है, छुट्टियों के बाद ही आना देखे कितना मुश्किल हो जाता है। चार छुट्टियां क्या आती हैं, ऐसे लगता है छुट गए अल्लाह की बंदगी से। खैर, थोड़ी सी मार मार के, थोड़ा सा इसको दबा के, डांट डूंट के बंदा सीधा करता है तो अनफुसकुम में उसके घर वाले इतने बड़े आजमाइश के पहाड़ बन जाते हैं। उनके तकाजे सामने आने लगते हैं। किसी को खाना नहीं मिल रहा तो वहां पे मुकदमा कर रहा है, किसी को कपड़े नहीं वक्त में मिल, एक मोजा ना मिलने की वजह से आप पे मुकदमा दायर हो जाता है। और जाओ पढ़ने, मेरे तो मोजे ही नहीं मिले। ये सिखाते हैं तुम्हें कि शौहर की चीजें ना रखो। इस तरह के कचोके लगते हैं इंसान के दिल पे कि वाकई यकीन ना हो इस रास्ते की सच्चाई का, तो बंदा के मेरी बला से, मेरे से ये चख चख रोज सुनी नहीं जाती। लेकिन लतुबलवन्ना, आजमाइश तो आएगी, ये तो होगा। अल्लाह कहते हैं हिकमत से काम करो, जुबान छोटी दिल बड़ा। देखो मिल क्या रहा है, बोलना नहीं है, बहस में नहीं पड़ना, क्योंकि वो तो तैयार है आपकी बात पकड़ने के लिए। याद रखिए, ऐसे वक्त दलाइल देने के नहीं होते, खामोशी के होते हैं। आंसू बहा दें जब लगे आपको किसी ने आपको बेवजह डांटा है, और वजह हो भी सकती है, सर्दी है, नहीं कपड़े सूखते, नहीं हो सका, लेकिन उस वक्त वजह ना बताए, एक आंसू बहा दें बस। मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप देखिए कि बाज दफा हमारा एक आंसू हमारे 10 बड़े जुमलों से ज्यादा काम कर देता है। आजमाइश तो होगी। इधर से निकलते हैं तो वाला तस्मौन मिनल्लज़ीन उतुल किताब, अगली आजमाइश खड़ी होती है। घर वालों को अल्लाह अल्लाह करके आराम किया, उनकी खातिर मदारते की, तो किताब वाले आ जाते हैं। ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो पहले से दीन के काम कर रहे होते हैं। अंधों में काने राजे हों या बहुत दीनदार हों, बज़ाहर देखिए सच्चा दीनदार कभी किसी दूसरे के दीन के काम पे तनकीद नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। जिसको तो अल्लाह का दीन प्यारा है ना, कि दीन फैले, वो तो किसी दूसरे को भी वो काम करता देख कर कहेगा शुक्र है अल्लाह का, मैं तो वहां नहीं पहुंच सका, ये तो पहुंच गया, मेरे बस में तो ये नहीं था, चलो शुक्र ये मेरे ही काम कर रहा है। सच्चा मुखलिस दीनदार दूसरे दीनदारों को अपना साथी समझता है कि ये काम तो मेरा था, शहादत हक की गवाही तो मेरे ऊपर थी, अल्लाह ने कल मुझसे पूछना है, चलो शुक्र है ये बहन भी करने लग गई, ये भी करने लग गया, कोई पूछे तो कहता है बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके दिल छोटे होते हैं, और दीनदार कभी छोटे दिल का नहीं होता, एक वनीर ऊपर चढ़ जाता है। देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि एक वो मीठा है जो आप एक चीज बनाने के ऊपर चीनी की तरह शुगर कोटेड कर देते हैं। आपने देखा है कि एक डोनट वो होता है जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, ग्लेस नहीं होता, उसके अंदर ही मिठास होती है। आप उसको जब खाएंगे ना तो पूरे एंड तक आपको उसका मिठास आएगी। और जिसके ऊपर एक वो चीनी की कोटिंग या चॉकलेट या चॉकबार आइसक्रीम है, एक बाइट लेंगे ना तो बाकी सारा भी गिर जाएगा। खदशा क्या लगा होता है कि एक मुंह में गई दूसरी गिर गई। फर्क क्या दोनों में? कि ऊपर कोटिंग है, और जिसकी ऊपर कोटिंग है वो लगता है ये सारे का सारा चॉकलेट से बना हुआ है, लेकिन अंदर खोखला होता है। कुछ लोगों का दीन गुंदा होता है आटे की तरह, अंदर गुंद गया, डो में डाल दिया, वो तो इंशाल्लाह ताला हकीकी दीन की मिठास पा लेते हैं, उनका अंदर दिल मीठा होता है। और जो ऊपर वाले होते हैं ना, वो कोडिंग है, सज गए संवर गए, वो कहते हैं अच्छा जी ये देखो जरा इनका दीन, ना 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 इनके पास ना 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 ना, ये ना करना वो ना करना, और इस तरह बातें सुननी पड़ती, कोई इल्ज़ाम लगाएगा। वल्लाही जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे इल्ज़ाम लगाता है, मैं कहती हूँ अल्लाह का अर्श कांप जाता होगा। और फिर इसकी सजा क्या पड़ती है कि बंदे को हक बात मिलती नहीं है, वो दुनिया वालों की नजर में आलिम होगा लेकिन उसको हक बात समझ कोई नहीं आएगी, तो बातें तो होंगी। दीनदारों का मिजाज है कि हर नए आने वाले को अपना हरीफ बना लेते हैं, कि गोया कि ये मेरे ही मुकाबले पे आ गया। फिर कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं, फिर लेग पुलिंग शुरू हो जाती है, फिर मेरे लोग तुमने ले लिए, तुम्हारे उसने ले लिए, वो खा जाएंगे, वो पी जाएंगे, वो ले गए, वो उड़ा के ले जाएंगे, तुम्हारी चीज़ें चली जाएंगी, तुम्हारी औरतों को बेवकूफ़ बना रहे, इस तरह की बातें। बिल्कुल इस आयत में वाकया अब्दुल्ला बिन उबई का, रस्म ताजपोशी की तैयारियां थी और तलअ बदरु अलैना, लोगों की नजरें जब नबी की तरफ गई तो उसने नबी के खिलाफ बातें शुरू कर दी। टेक्स्ट में लिख लें अल्लाह जीना के नीचे अब्दुल्ला बिन उबई और उसके खामख्याल लोग। इधर एक वाक्य भी आता है सही बुखारी का, खुलासा बता देती हूँ। सात बिन उबादा बीमार थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी खैरियत मालूम करने गए। अभी गज़वे बदर भी नहीं हुई थी और नए नए आप मदीना में आए थे। रास्ते में आपका गुजर एक मजलिस से हुआ जिसमें अब्दुल्ला बिन उबई मौजूद था, चूंकि मुसलमान नहीं हुआ था। बताया गया पीछे आपको कि गज़वे बदर की फतह से मरूब होकर ये इस्लाम कबूल करता है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन रवाहा भी वहां मौजूद थे, ये भी अभी मुसलमान नहीं हुए थे। जब अल्लाह के नबी उस मजलिस के पास से गुजरे तो आपके गधे के पांव यानी सवारी की वजह से कुछ मट्टी उड़ी, कुछ मट्टी जो थी वो उड़ने लगी। आप वहां रुके, लोग जो वहां बैठे थे आपने उनको दीन की कोई बातें बताई। अब्दुल्ला बिन उबई ने वहां खड़े होकर आपकी शान में गुस्ताखी की, आपको लट डाउन करना चाह, जाना है तो जाके बातें वहां सुनाए जो आपके पास आते हैं, हमारे पास आकर अपनी बातें ना सुनाया करें। ये टोन थी उसकी, कहने लगा इधर आके आप क्यों बातें करें, जाए जहां आप बैठते हैं वहीं बैठे। यदि लोगों को बाज़ गुस्सा तो कहते हैं आपने हमारा फील्ड ले लिया, हमारे जोन में आप आके दीन की बात करने लगे तो हमारा था, आप जाए जहां बात करते हैं वहां करें, हमें रास्तों में बातें ना सुनाए। अब्दुल्ला बिन रवाहा को ये बात बुरी लगी, उन्होंने उसको रोका। अल्लाह के नबी के सामने बात सारी चल रही है और ये हालात होने लगे तो अल्लाह के नबी ने कहा कि छोड़ दो इसको कुछ ना को। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी नहीं, आपको नहीं पता, आपकी बातें बहुत खूबसूरत हैं, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारे पास आके नसीहत दे। तो आप देखिए अब्दुल्ला बिन रवाहा को भी इस्लाम नसीब हो गया और दूसरे को, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई को नहीं हुआ। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि इस आयत में उस तरफ इशारा है कि बातें तो सुननी पड़ेंगी, और किन से बातें सुननी पड़ती हैं, वो मिनल्लज़ीन अशरकू, मुशरिकों से। इशारा है मक्की दौर की आजमाइशों की तरफ, वो अबू लहब की बातें हों जो आपका सगा चचा था, या वो अबू जहल की बातें हों। कहाँ उसने कहा कि अल्लाह के नबी के हाथ टूट जाएं जब तब्बत यदा अबी लहब वतब नाजिल की अल्लाह ने। तो याद रखिए बातें तो होंगी। मुझे ऐसे लगता है कि दीन का काम करने वाला पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, जो चाहे पत्थर मारे, इल्ज़ाम लगाए, बातें कर लो। तो याद रखिए कि जो अपनी जात का दिफा करेंगे वो तो काम छोड़ के पहले आधा घंटा सफाइयाँ पेश करेंगे, और जिनको इसकी परवाह नहीं वो कहते हैं कि छोड़ो, हमारा रब हमें देख रहा है और हम उसकी नज़रों में पहले चेक कर लें कि वाकई जो ये बातें कह रहे हैं वो ठीक तो नहीं है, और अगर इनकी बातें ठीक है तो जाके इनको शुक्रिया बोलो कि तुम्हारी इन बातों की वजह से हमारा एहतसाब हो गया, वरना नहीं तो काम कीजिए, अपना काम करें। देखिए खुशकिस्मत है वो जिसको अल्लाह के रास्ते में बातें सुननी पड़ी। सिर्फ बातें सुन के अगर जन्नत मिल गई तो क्या मुश्किल सौदा है, सहाबा ने तो जाने कटा दी। अल्लाह कहता है जो बातें करे उसको वहीं डंप कर दो, हर एक अपने घर में गड़ा रखे, उन सारी बातों को वहां डंप करके खत्म कर दो। करो क्या, हाँ इन बातों का आप जवाब चाहते हो, बचना छोड़ना चाहते इन चीज़ों को, तो वहीं तस्वीरू व तत्तकू, सबर और तकवा, ये है दो हथियार। हाँ लेकिन फ़ैन नज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर, है ये बड़ी हिम्मत का काम, बातों के जवाब में सबर करना, अल्लाह अकबर, ये है इलाज मेरे और आपके लिए, सबर तकवा। सबर क्या है, जुबान छोटी रखो, रिएक्शनरी ना रहो। देखिए वो तो खुद बंदा बेचारा अभी दीन की उसको समझ नहीं आ रही, आप उसको क्या सिखाएंगे, चुप कर जाए, पी जाए आप एक दफा, बड़ा सुकून भरे, बल काज़िमीन अलगैस वाफू यस्फहू करें। और तकवा क्या है, तत्तकू, अपनी मजीद इसलाह करो। हमारा हाल क्यों बिगड़ता है, लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, झगड़े क्यों होते हैं बाज़ औक़ात, के सब्र करते कोई नहीं, मुंह से हमारे भी कुछ निकल ही जाती है कड़वी, जिसको बुनियाद बना के सारे खानदान में कहते हैं देखो देखो इसने ये कहा। देखिए औरत को अल्लाह ताला ने अपने मिजाज के एतबार से कमज़ोर बनाया है, वो सच्ची भी होती है ना तो झूठी लग जाती है कभी, लेकिन वो लड़की या औरत जो आगे से बोलती नहीं है, उसकी सास या उसका शौहर या कोई और खानदान का बंदा उसको कभी झूठा नहीं करा सकते। लोग तो ये कहती क्या है, तो आगे से क्या कहेगा, चुप रहती है, तो कहेगा शुक्र करो अल्लाह का चुप रहती है। तो जिस तरह घर बसाने में खामोशी काम आती है ना, तो आप दीन का घर बसा रहे हैं। याद रखिए इस्लाम भी एक कमरा, एक घर है, इसलिए सब्र करें। दूसरी गलती जो हमसे होती है ना रिएक्शनरी होने के अलावा, वो क्या है कि हम फिर वो काम छोड़ देते हैं। मुझे उस वक्त वो सिस्टर इंतहाई काबिले रहम लगती है जो कहती है मैंने अपने मियाँ को खुश करने के लिए क्लास छोड़ दी है, मैंने अपने घर वालों की खुशी के लिए अब ये पर्दा छोड़ दिया है, तो मैंने कहा आज ये छोड़ा है, कल वो आपको दूसरे पे तैयार करेंगी। बड़े बड़े पहाड़ टल जाते हैं, सिर्फ आप जमे रहें, तक तक हो आप हट गए तो कौन आपको रोकेगा। बस आप देखिए कि ट्रैफिक जब ब्लॉक होता है रोड में, तो आप गाड़ी हल्की कर लें, उसको न्यूट्रल में कर लें, खड़े रहेंगे तो आप निकलेंगे ना। एक दफा अगर घबरा के आपने एग्जिट लेन से अपने आप को बाहर कर दिया, तो कोई आपको मंजिल देगा? इस रास्ते में ये होगा, कभी आप 60-80 की स्पीड से भी चलेंगे इंशाल्लाह, आप कहेंगे आजकल कोई कुछ कह ही नहीं रहा, फिर आप इस पे परेशान हो जाएंगे। कुछ इजाजतें लेने की जरूरत नहीं होती, बताने की जरूरत होती है। आप अपनी कमिटमेंट से बताएं, अपनी खुशी से बताएं। आप चाहते हैं ना आपका कुरान आपके घरों में, जिस दिन क्लास लेते हैं उस दिन अपने चेहरे से बताया करें कि मैं ज्यादा खुश हूँ, मैं आज ज्यादा अच्छी माँ हूँ। छुट्टी वाले दिन जितने मर्जी क्रैंकी हो जाए बच्चों के साथ, कोई मर्द नहीं पढ़ना पसंद करता इसको, सिर्फ शैतान दिल में वक्ती तौर पर उबाल डालता है। अगर आप उनको ये एहसास दिला देना कि जिस तरह दौलत कमाने का आपको शौक है, आप ओवर टाइम भी करते हैं, वीकेंड्स भी करते हैं, तो हमें भी इस पे अल्लाह ताला ने डाल दिया एक शौक। सूरत मुजम्मिल में अल्लाह ताला अपने नबी को कहते हैं वस्बिर अला मा यकूलून, और सब्र कीजिए उन बातों पर ये जो कहते हैं, वहजुरहुम हजरन जमीला, और वजादारी के साथ इनसे अलग हो जाए। क्या कहा था, छोड़ के चले जाओ? नहीं, वहां रहते हुए इन बातों को छेड़े ना। याद रखें कि जो बात इशू बने उसको छेड़े ही ना, जिससे आपको लगे घर में अब झगड़ा शुरू हो जाएगा, खाने की टेबल पे बदमजगी हो जाएगी, अवॉइड करें, कहना बस इस मौजू पे बात नहीं होगी, वरना तो लोग आपको कभी कुछ कहेंगे। और सूरत हिजर में अल्लाह ताला कहते हैं वला नालमु अन्नक यदीकु सदरुक, हम खूब जानते हैं कि नबी जो आपका दिल कटता है, बीमा यकुलून जो ये बातें आपको कहते हैं, नबी का दिल कटता था लोगों की बातों पे, तो मेरा और आपका क्या होगा। तो हम सब अल्लाह ताला से इसकी दुआ करें कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका इन्नका अंतल वहाब। हिम्मत मांगी अल्लाह ताला से करें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अकल समझ अल्लाह ने सबको दी हुई है। जो बंदा दीन पर नजर रखता है, अल्लाह ताला जरूर लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डालता है।
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ